हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवी वेति साङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दीवायतस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 22। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। द्वारिका के छितों पर खड़ी हुई जो स्त्रियां हैं, कुल स्त्रियां हैं, वो भगवान के गुणगान करते हुए कह रही हैं, स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम् स्वजीव मायाम् प्रकृतिम् सशिक्षतीम् अनाम रूपात् मनिरूप नामनी विधित समानो नुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम् स्वजीव मायाम् प्रकृतिम् सशिक्षतीम् अनाम रूपात् मनिरूपमानामनी विदित समानो नुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम् स्वजीव मायाम् प्रकृतिम् सशिक्षतीम् अनाम रूपात् मनिरूप नामनी विधित समानो नुससार शास्त्रकृत् शब्दार्थ स एव भूयो, स एव मतलब वही भगवान जो जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वो आदि रूप में कारण दक्षाय विष्णु के रूप में समस्त सृष्टि जो है उनके अंदर लय हो जाती है, वही स एव वही भगवान है। ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई दूसरे हैं, वही एज इट इज उनका ज्ञान, क्योंकि भगवान जो है उनका उनके अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। भगवान का ज्ञान, भगवान का बल, भगवान की शक्ति एज इट इज वही रहती है। हम मनुष्यों में या कोई दूसरे जीव जो होते हैं वो कभी एज इट इज नहीं रहते। जैसे हमारी बुद्धि की बात की जाए, पहले हमारे अंदर कम बुद्धि होती है जब बचपन होता है, फिर जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं फिर बुद्धि बढ़ जाती है, फिर बूढ़े हो जाते हैं तो बुद्धि खत्म हो जाती है। सौंदर्य का यही हाल है, शुरू में जब कोई भी व्यक्ति यंग होता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन धीरे 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 सुंदरता क्षीण होती जाती है। लेकिन उसी तरह बल, जो भी हमारा वैभव है वो समय के साथ साथ वो खत्म होता जाता है, लेकिन भगवान जो है वो ज्यों के त्यों रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। भगवान के अंदर चाहे वो किसी भी स्वरूप में हमारे सामने आते हैं तो भगवान परिपूर्ण होते हैं। तो ये कह रहे हैं स एव भूयो, भूयो मतलब फिर से। अब उन्होंने क्योंकि पहले क्या होता है जब लय होती है तो सारी सृष्टि अपने अंदर लय कर देते हैं, वही भगवान फिर से सृष्टि करने के लिए क्या करते हैं, निज वीर्य चोदिताम। निज वीर्य मतलब पुनः वो फिर से। अब इसका मतलब ये है जो भूयो लिखा हुआ है ना, वही भगवान बारंबार सृष्टि को पुनः पुनः अधिकार देते हैं। निज वीर्य अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से भगवान प्रकृति को ये अधिकार देते हैं कि वो पुनः पुनः जीवों का क्या करते हैं, स्वजीव मायाम प्रकृतिम सशिक्षितम। स्वजीव मायाम वही भगवान जो ये प्रकृति है जो उनके ही जीवों को मोहित करती है, स्वजीव मायाम यानी कि वही उनके अपने जीव हैं, ये सारे उनके अंश हैं, उनको ही मोहित करती है। और वो क्या करती है, प्रकृतिम सशिक्षतीम यानी कि ये प्रकृति किस जिसमें भगवान जो है वो पुनः पुनः बार बार सृष्टि करते हैं, क्यों करते हैं, सशिक्षतीम। सशिक्षितेम का मतलब यहाँ पर लिखा है पुनः सृष्टि करते समय, क्योंकि यह प्रकृति की इच्छा होती है उस समय कि वो चाहती है कि सृष्टि हो। प्रकृति की इच्छा कैसे हो जाती है, क्योंकि भगवान काल के रूप में उन्हें स्वजीव माया, अब देखो सारी जितने भी जीव हैं उनको माया उनको प्रेरित करती है, और प्रकृति को भगवान काल रूप से प्रेरित करते हैं, क्योंकि अब जितने भी जीव हैं वो तो कारण दक्षाय रूप के अंदर चले गए हैं और वहां पर अब उनके पास न नाम है न रूप है और न ही वो कोई कार्य कर सकते। अब हमें कर्म करने का अधिकार मिलना चाहिए ना, तो जिस तरह से हम
जीव जो है ना कारण लक्षणी विष्णु के अंदर चले जाते हैं तो उनको पुनः इस सृष्टि में आना होगा और वो वापस उनको कार्य करना पड़ेगा ताकि फिर वो क्या करेंगे, उनको कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं, ताकि उनको भोग की सुविधा प्राप्त हो, यानी कि जो जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके अनुसार उनको भोग मिलेगा और भोग की सुविधा देने के लिए प्रकृति जो है वो वापस से अपना निर्माण करना चाहती है। लेकिन क्योंकि प्रकृति स्वयं से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है ना, जड़ वस्तु स्वयं से कुछ नहीं कर सकती। जैसे हमारा शरीर, अब हमारा शरीर है उसके अंदर यदि भगवान का एक अंश आत्मा के रूप में अथवा भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में नहीं हो तो फिर शरीर तो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह प्रकृति जड़ है, इसमें कुछ भी कार्य करने का कार्य करने की शक्ति नहीं है। अब भगवान जब कारण दक्षिण विष्णु के रूप में प्रकृति को चेतना प्रदान करते हैं तब प्रकृति जो है वो कार्यशील होती है। तो भगवान अब और वैसे भी जिस तरह से कोई स्त्री होती है वो संतान उत्पन्न करने की यदि उसकी इच्छा हो लेकिन यदि पुरुष का उसको संग नहीं मिले तो फिर ना वो नहीं कर सकती, उसी तरह जब तक भगवान का दृष्टिपात नहीं होता तब तक ये जो प्रकृति है ना उससे भी उसकी उसमें उपज नहीं हो सकती है, वो कोई कार्य नहीं कर सकती है। इसे भगवान प्रकृति को दृष्टिपात करते हैं और पुनः पुनः इस सृष्टि का सृजन होता है और भगवान जो है वो कारण लक्षणी रूप में प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान अंतर्यामी, ये जो भगवान जो है कारण लक्षणी विष्णु के रूप में प्रकृति के अंतर्यामी है। फिर कारण लक्षणी विष्णु के सांसों से जब ब्रह्मांड निकलते हैं तो हर अभी ब्रह्मांड भी जड़ है, ब्रह्मांड को सजीव करने के लिए भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर आकर ब्रह्मांड के अंतर्यामी बन जाते हैं। और उसी तरह से जीव भी जड़ है लेकिन जीव के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में परमात्मा के स्वरूप में भगवान जो है वो उन्हें चेतना प्रदान करते हैं। यानी कि जब जो कुछ भी हो रहा है, हर काम जो हो रहा है वो भगवान की चेतना प्रदान, जब भगवान चेतना प्रदान करते हैं ना तो संसार जो है वो सजीव होता है। भगवान की चेतना के बिना संसार मरा हुआ है, संसार निर्जीव है जब कृष्ण उसे चेतना प्रदान करते हैं। जैसे बहुत बड़ा कारखाना हो उसके अंदर हजारों लाखों मशीनें हो, सारी मशीनें बिजली से चालू होती हैं, है ना, परंतु यदि पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए फिर एक भी मशीन काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से भगवान की चेतना के स्पर्श से ये प्रकृति करती है कार्य, यदि भगवान अपनी चेतना का स्पर्श उसे प्रदान नहीं करे तो प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। कितना बड़ा काम है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनेक अनंत कोटि जीव हैं। अब सारे ब्रह्मांडों को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, केवल एक ब्रह्मांड का अगर हम लेते हैं तो एक ब्रह्मांड में भी अनंत अनंत जीव हैं। एक एक को कितने काम करने हैं, क्या क्या उसने पिछले जन्म में कार्य किए हैं, किस किस तरह से उसको उनके कार्यों के अनुसार उसका फल देना है, क्या क्या कर्मों के अनुसार, सब चेतना भगवान से आ रही है और भगवान हर एक जीव को चेतना देते हैं कि इसके साथ तुम्हें क्या करना है। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, और प्रलय के समय क्या होता है, जब भगवान अपनी चेतना हटा देते हैं तो सारी सृष्टि सस्पेंड हो जाती है, कोई कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, अनाम रूपा अनाम, अनाम मतलब बिना उपाधि के सारे जीव, क्योंकि नाम के बगैर अब उनके पास वो शरीर तो नहीं रहा ना। अनाम रूप आत्मनि, यानी आत्मा के स्वरूप में, अब क्योंकि वो कारण दक्षिण विष्णु के रूप में जब आ जाते हैं उनके अंदर तो उनका उनके पास रूप रंग उपाधि कुछ भी नहीं होता है, तो रूप नामनी यानी रूप तथा नाम, अब उनको वापस से प्रकृति क्या प्रदान करती है, रूप और नाम प्रदान करती है। मतलब कोई उसको नया शरीर मिलता है, वो नया शरीर स्वीकार करते हैं वेदित सम्मानों नुससार शास्त्रकृत, और फिर क्या होता है भगवान उनको प्रदान करते हैं नुससार हस्तांतरित कर लिया जाता है, यानी कि भगवान अपना खुद से उस प्रकृति को स्वीकार करते हैं और प्रकृति पर दृष्टिपात कर देते हैं और सब जीवों को सबका नाम रूप उनको प्रदान करते हैं ताकि उनको भोग करने की सुविधा प्राप्त हो और प्रकृति को स्वीकार करते हैं। विशेषकर उन दो कारण हैं। क्या कारण है? ताकि जीव अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगे और वास्तव में उन्हें शास्त्रकृत मतलब शास्त्रों का संग्रह उन्हें देते हैं भगवान। एक तो उन्हें नाम उपाधि देते हैं, एक नया जन्म देते हैं शास्त्र में। ऐसा नहीं करते भगवान कि बस दुनिया बना देते हैं, जीव उत्पन्न करके भगवान छोड़ देते हैं कि जाओ जैसे करना है मरना है मरो, कुछ ऐसे नहीं। भगवान अवश्य हृदय में बैठकर चैत्य गुरु के रूप में उन्हें प्रेरणा देते हैं, भगवान शास्त्र देते हैं, शास्त्रकृत। ये शास्त्र देना भगवान का सबसे बड़ा उपकार है। वास्तव में भगवान ने ये शास्त्र दिए हैं और भगवान खुद कहते हैं 15.15 में कि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, ताकि जीव शास्त्र पढ़े और शास्त्र के द्वारा जीव मुझको समझे। यानी भगवान चाहते हैं कि जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करे, इसलिए भगवान जीव की सृष्टि करते हैं, कर्मों के अनुसार उन्हें शरीर देते हैं प्लस उन्हें शास्त्र देते हैं ताकि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये जो सृष्टि है उसकी रचना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये कुल स्त्रियां जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बता रही है कि जीव भगवान जो है वो बार बार सृष्टि पुनः स एव भूयो हो निजी निज वीर्य चोदना, अपनी शक्ति से भगवान पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। स्वजीव मायाम प्रकृतिम ससृक्षताम, और इस प्रकृति को काल के रूप में प्रेरणा देते हैं ताकि प्रकृति जो है वो सृष्टि करना चाहती है। प्रकृति के हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या है? अनाम रूपात्मनि रूप नामना, जो जीव हैं जो अभी जिनके पास कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं, यानी उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग प्रदान करने के लिए जीव की सृष्टि होती है और साथ साथ में वेदित समानो अनुसार शास्त्रकृत, और साथ साथ में भगवान यह व्यवस्था करते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं ताकि जीव अपने जीवन को अपने इस अमूल्य जीवन का सत्यानाश ना करे बल्कि कंट्रोल में रखे अपने जीवन को और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताए जिससे वो धीरे धीरे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सके। अनुवाद देखिए, तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने का अधिकार दिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है दिव्य प्रेममयी सेवा के प्रतिधान में मग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध शाश्वत रूप से बद्ध जीव हैं और उनका जिम्मा बहिरंग शक्ति यानी माया पर रहता है कि वह परमात्मा के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। यानी कि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं, दो प्रकार के जीव श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, जो नित्य मुक्त होते हैं वो तो शाश्वत रूप से मुक्त होते हैं, वो भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं। लेकिन जो नित्य बद्ध जीव होते हैं उनका पूरा जिम्मा जो है वो माया लेती है। ये क्या है? स्वजीव माया। तो ये बहिरंग शक्ति माया होती है उसके ऊपर होता है। वो क्या करते हैं? परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे, क्योंकि नित्य बद्ध जीव बद्ध क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि हमें भोग करना है, हमें प्रभुत्व जताना है। तो ये उनकी प्रकृति को, ये जो विद्रोहात्मिक उनकी मनोवृत्ति है, उसकी सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? माया की है। तो नित्य बद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध अंश रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। उनको ये याद नहीं रहता कि हम भगवान के अंश हैं और हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करें। इसलिए क्योंकि वो मोह में, माया में गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सुखी होने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा योजनाएं कुछ काल बाद ध्वंस हो जाती हैं। यानी कि पहले तो वो कोशिश करते हैं हर तरह से आनंद उठाने की, लेकिन क्योंकि संसार में उनको आनंद प्राप्त हो, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवत आगमापाई अनित्याह तस् आद्यंत्य मध्य कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। उनका आदि और अंत होता है, इसे भगवान कहते हैं। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं उनके अंदर नहीं रमते, और जितनी भी योजनाएं हैं वो काल के साथ समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद्गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। कल्पक्षये पुनस्तानी कल्पादौ विसृजामि हम। ये बड़ा अत्यंत ही भगवान की महिमा है कि जब जीव जो है वो बहुत बहुत ना योजनाएं करता है, लेकिन भगवान जो है वो, भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, कालोस्मी लोकक्ष, यानी कि मैं काल हूँ और समस्त जीवों को समाप्त करने का जिम्मा मेरा है। भगवान कहते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से शाश्वत चलती रहती है। जो शुरू में लिखा हुआ है ना, स एव भूयो निज वीर्य चोरितम, यानी कि जो सृष्टि की क्रिया है वो बार बार ऐसे सृष्टि होती है फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है फिर प्रलय होता है, तो ये बहिरंगा शक्ति से शाश्वत चलती रहती है, वही सबका कारण है। लेकिन जीवों को जो स्वाभाविकतः भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को बुलाए रहते हैं, बहिरंगा शक्ति के चुंगल से छूटने का पुनः पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। वास्तव में मनुष्य का के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने वास्तविक संबंध को, जो भगवान के साथ है, उसको भूलकर इस बहिरंगा शक्ति में माया से मोहित हो जाता है, और यहीं पर जो जीव है उनके साथ ही अपने संबंध को वास्तविक संबंध मानता है। स्वजीव मायाम प्रकृतिम सशिक्षित। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस मधुर संबंध को पुनः जीवित करने के लिए बहिरंगा शक्ति के चुंगल से छूटने का पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। जीव की चेतना को जागृत करने के लिए भगवान शास्त्रों की भी सृष्टि करते हैं। भगवान शास्त्र बताते हैं, शास्त्रकृत। तो बद्ध जीव के लिए वैदिक वांग्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सकें। भगवान उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान करते हैं, पुनः पुनः उनकी सृष्टि करते हैं, प्लस उनको शास्त्र का ज्ञान देते हैं, गुरु देते हैं, साधु देते हैं, संत देते हैं, ताकि भगवान के साथ अपने मधुर संबंध को, जो वो भूल गए हैं, वो पुनः याद करें और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर आए। श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, या उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं, और यह सब मेरे द्वारा अपनी भौतिक बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य होता है, जीवों को पुनः पुनः उत्पन्न करना, और पुनः पुनः उनका क्षय हो जाता है, फिर वापस प्रकृति जो है उनको ये सुविधा प्रदान करती है कि कैसे अपने कर्मों के अनुसार वो भोग भोगे और पुनः अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़े। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः आध्यात्मिक सफुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूप तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और इसी के साथ ही शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। वास्तव में हम सब आत्मा हैं, कोई नाम नहीं होता जीवों का, यानी आध्यात्मिक सफुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, वो तो आत्मा होते हैं, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर उनको ऐसा नाम रूप और ऐसा सब दिया जाता है क्योंकि उनके हृदय में इच्छा होती है। तो उसी के साथ ही भगवान यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का भी अवसर देते हैं। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा नामों में व्यस्त होते हैं। कहाँ है आज अगर हम लोग देखते हैं हमारी पहचान क्या है। आज हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम कभी भी नहीं बोलते कि हम आत्मा है। कोई बोलता है, हम हमेशा वही नाम बताते हैं, भाई मैं अपना नाम बताऊंगी कि मैं ये हूँ, और फिर बोले नाम के बाद बोले ये कौन से, मतलब आप कौन हो, तो फिर अपने फादर का नाम बताएंगे कि भाई उनका बेटा, अपने पति का नाम बताएंगे। मतलब हम पूरा जुड़े हुए हैं इस उपाधियों से, इस नाम से, इस रूप से। अभी जो भी जैसे हमारी जो आइडेंटिटी बनती है, जो हमारा पासपोर्ट बनता है, वो शरीर का तो बनता है ना, आत्मा का थोड़ी बनता है। तो रियल में हम क्या हैं वो जीव भूल जाता है और अपने इस जो हमें जो शरीर मिला है वही समझने लगता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और रूप के पीछे पागल बने रहते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूपों को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम रूप पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। बस यही याद रहता है कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा देश है। मतलब अपनी वास्तविकता को जीव बिल्कुल भूल गया है, याद नहीं रहता कि मैं जीव, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, मेरा वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। जबकि बार बार शास्त्र चीख चीख के कहता है कि ये संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सारे शरीर के रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी जीव भुलक्कड़ है और माया से इतना मोहग्रस्त है, तो फिर क्या करता है कि वो शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। लेकिन शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने में संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। लोग फिर भी शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरणार्थ भगवद गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शक का है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से श्रीमद् भगवद गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का काम केवल भगवान की शरण में आकर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रजा, आपको मेरी शरण में आना है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग जो हैं वो भौतिक शक्ति के जादू से, क्योंकि वो इतना भौतिक शक्ति उन पर आक्रमण करती है और उसका आक्रमण स्वीकार करते हैं वो, और भगवान की बात को नहीं मानते और उस जीवन शैली को नहीं अपनाते जो कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं। जिसने भगवद गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया है उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय, यानी कि भगवद गीता से जीव को क्या समझना है, अपनी स्थिति समझनी है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ये समझना है, मुझे किस तरह से कार्य करना है ये समझना है, यानी ईश्वर, आत्मा, काल, कर्म, और प्रकृति के विषय में भगवद गीता हमें समझाती है। और फिर जब जीव अपनी असलियत को समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण से अपने प्रेम को निर्माण करना है, तो फिर उसे श्रीमद् भागवतम महापुराण की शरण लेनी होती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे जन्म मृत्यु के आवागमन में फंसकर माया के चुंगल में आ जाते हैं। इस जीव का दुर्भाग्य है कि भगवान के दिए हुए इन शास्त्रों की ओर उनकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि जीवन भर केवल इस शरीर से मोह रखते हैं और शरीर से रिलेटेड वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोह रखते हैं और अपने जो इतना अनमोल मनुष्य जन्म है उसको इसी तरह से जाया करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो ये कितनी महान, ये जो कुल नारियां स्त्रियां जो ऊपर खड़ी हुई हैं, वो इतनी महान बात बता रही हैं कि वास्तव में जो ये वही भगवान है जो पुनः पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जीव को नाम उपाधि देते हैं, उनको भोग प्रदान करते हैं और उनको शास्त्रों के रूप में उनको गाइडेंस देते हैं कि वो पुनः अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरि बोल।